सव्यसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्व मंगल मांगल्यं सर्व कल्याणकारिकं प्रधानं सर्व धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। अष्टानिका महापर्व के इस पावन प्रसंग पर हम लोगों की स्वाध्याय के क्रम में अभी की स्वाध्याय के क्रम में श्रीमद् राजचंद्र जी द्वारा रचित कुछ पदों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। कल चर्चा हुई थी कि अनेक ज्ञानी होते हैं लेकिन सभी ज्ञानियों का अभिप्राय एक होता है, और ज्ञानियों को ज्ञानियों के प्रति कैसा बहुमान आता है ये अभी अपन लोग माता जी की चर्चा में सुन रहे थे। गुरुदेव श्री के प्रति कैसा अहोभाव गुरुदेव श्री ने मार्ग तैयार करके रखा है, मैं तो उनके पीछे पीछे चलने वाला हूँ, ऐसा इतना बहुमान का भाव ज्ञानी को ज्ञानी के प्रति आता है, क्योंकि ज्ञानी ही वास्तव में ज्ञानी के हृदय को पहचान पाते हैं। कल जो दोहों पर अपन लोगों ने चर्चा की वो वास्तव में जैन दर्शन का ऐसा एक समझ लीजिए मूल रहस्य है, ये जड़ चेतन की भिन्नता का रहस्य, ये मूल रहस्य है जिनागम का। और जब तक हम लोग इस रहस्य को नहीं समझ पाएंगे तब तक अनेक प्रकार के भ्रम जाल में अपन लोग अनादि काल से पड़े हुए हैं, और जब तक ये बात जो इसमें कही जा रही है दोहे के अंदर, बहुत कम दोहे हैं, ज़्यादा नहीं हैं, है ना, मैंने ऐसे लगातार लगाओ तो छः लाइनों का कुल दो दोहे हैं यूँ देखा जाए तो ये, लेकिन दोनों दोहों में उन्होंने एक प्रकार से पूरा जैन शासन का मर्म अपने सामने रख दिया। ज्ञानी के एक एक वाक्य में अनंत अनंत आगम होते हैं। इस सत्य का दर्शन अपने को इस छोटे से काव्य में होता है, ज़्यादा लाइनें लंबी नहीं होने पर भी कितना रहस्य भरा है वो अपन ने कल चर्चा की। कल जो दोहे अपन ने पढ़े थे फिर से एक बार अपन उनको खाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जड़े ने चैतन्य बन्य द्रव्य नो स्वभाव भिन्न सुप्रतित पने बने जेने समझाए छे स्वरूपे चेतन निज जड़ छे संबंध मात्र अथवा तिगेय पण पर द्रव्य माई छे एवो अनुभवेनो प्रकाश उल्लसित थयो जड़ती उदासी तेने आत्मव्रति थाये छे। अब आगे देखो, आज बहुत बढ़िया, क्या कायानी विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाये छे। क्या देखो दोहा, छोटा सा दोहा, कितनी बढ़िया बात। तीन चीजें कल अपनी मतलब छह लाइनें, पहले पद की छह लाइनें कल अपन पढ़ चुके थे, और लास्ट वाली लाइन में ये कहा था एवो अनुभव नो प्रकाश उल्लसित थयो जड़ती उदासी हाँ तेने आत्मवृत्ति थाय छे। अकेली उदासीनता नहीं, क्योंकि अकेली उदासीनता तो द्वेष रूप भी हो सकती है। कसाय गर्भित उदासीनता को उदासीनता नहीं कहते, है ना। वैराग्य आता है ना अपने को, उदासीन भैया हम तो उदासीन, हमको तो बहुत संसार से वैराग्य आ गया। क्यों वैराग्य आ गया? कि कोई पूछता ही नहीं, तो कोई पूछता नहीं इसलिए वैराग्य आ गया। अथवा क्या हुआ, अरे भाई साहब आज रत्नकंठ सराव का चार पढ़ा था, नरक के दुख हमने देख सुने, उसमें हमारी तो आत्मा कांप गई। तो नरक के दुख सुन करके जिसकी आत्मा कांपती है, स्वर्ग के सुख सुन करके उसकी आत्मा डोलेगी। फिर गुरुदेव का वाक्य मेरा नहीं है। कभी कभी हम लोगों को संसार की प्रतिकूल परिस्थितियों को देख करके उदासीनता अथवा वैराग्य आता है, कहते वो उदासीनता अथवा वैराग्य सच्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता के निमित्त से या प्रतिकूलता के कारण से आया हुआ वैराग्य अनुकूलता में धुलेगा। यहां तो भेद ज्ञान पूर्वक वैराग्य आया है। अरे चाहे नरक की भीषण ज्वाला हो और चाहे स्वर्गों का भोग हो, वो सब जड़ है। जड़ से भिन्नता होकर के क्या हुआ, जड़ और चेतन की भिन्नता का बोध होकर के जड़ से उदासीनता हुई और उसे आत्मवृत्ति होती, आत्मा की और वृत्ति आत्मा के सन्मुख हुई, आत्मा के सन्मुख वृत्ति। और आत्मा के सन्मुख हुई तो किससे विमुख हुई, कि जिसके सन्मुख अभी तक थी। अभी तक क्या था, कि अभी तक वृत्ति जड़ के सन्मुख थी और आत्मा से विमुख थी। अभी क्या हो गया, कि वृत्ति आत्मवृत्ति हो गई, आत्मा की ओर झुकने वाली वृत्ति हो गई और जड़ से उदासीनता हो गई, उल्टा हो गया। अभी तक हम काय से उदास हैं, अभी तक हम आत्मा से उदास हैं, जड़ में बिल्कुल जागृत हैं, है ना। जड़ की वृद्धि हो तो अपने को लगता है कि कुछ बड़ा, लेकिन ज्ञानी कि ज्ञानी को आत्मा की शुद्धता की धारा बढ़े, आत्मा की आनंद की धारा बढ़े, शुद्धता का परिणमन बढ़े, उस बढ़ती हुई शुद्धता में आनंद का वेदन करते हैं ज्ञानी, है ना। संयोग की बढ़वारी होने कोई बढ़वारी नहीं लगती, पुण्य की बढ़वारी होने कोई बढ़वारी नहीं लगती, बाहर की बढ़वारी होने कोई बढ़वारी नहीं लगती। वो जानते हैं कि ये तो जड़ पुद्गल के खेल हैं। रजकण कल बताया था ना, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी मान्या सर्वे पुद्गल एक स्वभाव। ये जो रजकण और रिद्धि वैमानिक देव की ये जो वैराग्य का ये जो उसमें समभाव आना, कि चाहे सड़ा गला पुद्गल का पिंड पड़ा हो, चाहे वैमानिक देवों की रिद्धि पड़ी हो, जिसको पुद्गल दिखाई दे, दोनों पुद्गल का पिंड दिखाई दे, समझ लेना उसको चैतन्य के दर्शन हुए हैं। अब यहां पर जो लास्ट अगला जो था बहुत गजब का छंद है, काया नीवी सारी माया, ये तो बहुत ही प्रिय छंद है मेरा तो है। काया नीवी सारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। भव अंत का उपाय क्या, तो पहले अपन ये नक्की कर लें कि भव अंत करना भी एक नहीं करना है। उपाय तो बाद में है ना भाई, डॉक्टर बता रहा है कि रोग का उपाय ये, रोग के अभाव का उपाय है, लेकिन वो लेकिन रोगी कहे कि डॉक्टर साहब मुझे मिटाना ही नहीं, तुम काहे को माथा पट्टी कर रहे हो, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। तो अपन लोग जितने यहां पर बैठे हैं, अपन ये मान के चलते हैं कि अपन सभी लोग भव का अंत करने के लिए उद्यमशील हैं। भव का अंत कैसे हो जाए, ये एकमात्र हमारी भावना है। हमें भव नहीं चाहिए, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अभी तक क्या हुआ था, कभी तक भटक रहे थे, लेकिन अब भगवान के सामने आके क्या बोलते हैं अपन, अब ना भटकेंगे संसार में। तो यहां भव अंत का उपाय क्या बताते हैं, देखो, कायानी विसारी माया। अभी तक हमारा सारा जीवन, आज तक का, अनंत भवों का, अनंत भवों से लेकर के आज तक का हमारा जितना जीवन है, वो सारा का सारा जीवन देहाश्रित जीवन है। पंडित टोडरमल जी की भाषा में इसी बात को कहें, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ, लेकिन इस पर्याय की तो थोड़े काल की स्थिति है और मुझे यहां सर्व साधन मिले हैं, इसलिए मुझे अपना हित कर लेना चाहिए। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में तन्मय हो गया। देहाश्रित जीवन हमने जिया है। अभी क्या कर रहा भव अंत का उपाय क्या, कि जिन्होंने कायानी विसारी माया, काया को विस्मृत कर दिया। अभी तक हम काया में फुले फुले होते हैं ना, जो जो भी शरीर के रूप रंग ये जो जो भी है, और फिर क्या किया कि ये केवल काया की माया विसारने का मतलब काली, ये तो नास्ती हुई, अस्ति क्या हुई, तो कहते स्वरूपे समाया। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी देह दृष्टि है, जो देह दृष्टि में गाफिल हैं, वे स्वरूप में समाने के लायक नहीं है। स्वरूप में कौन समाएगा कि जिसने देह दृष्टि छोड़ दी है, देह की माया का जिसने विसार दिया है, विस्मरण कर दिया है कि वो स्वरूप में, और वो और क्या हुआ कि स्वरूप में समाए। देखो, काया की माया को विसार दिया और स्वरूप में समाए, दो काम किए कि एक ही काम किया है, दो काम नहीं है, दो तो कहे जाते हैं, कहां से हटा और कहां उपयोग लगा। तो इधर आत्मा में उपयोग का लगना, यही वहां से उपयोग का हटना है, पर वहां से उपयोग का हटना यही आत्मा में उपयोग का लगना है। काम दो नहीं है, लेकिन मैंने अस्ति और नास्ति से कथन है कि स्वरूप में समाए, ठीक है, और स्वरूप में समाए तो कहां से हटे, अभी तक जहां जहां डटे हुए थे वहां से हट गए। क्यों? क्योंकि स्वरूप में समावे तो स्वरूप में समाना भी हो और देह दृष्टि भी बनी रहे, माने देह दृष्टि भी बनी रहे और स्वरूप में समाना भी हो जाए, तीन काल में संभव नहीं है। शरीर के एक रजकण को भी जो अपना मानेगा, शरीर के एक परमाणु को भी जो अपना मानेगा, तब तक उसको आत्मानुभूति की पात्रता, आत्मानुभूति की योग्यता फलित नहीं होगी। तो यहां तो क्या कहा कि काया की विसारी माया स्वरूपे समाया एवा निर्ग्रंथनो पंथ, ऐसे निर्ग्रंथ का पंथ है ये। क्या निर्ग्रंथ? निर्ग्रंथ का पंथ क्या है कि उन्होंने निर्ग्रंथ किसे कहते हैं, ग्रंथ माने होता है ग्रंथि, ग्रंथि माने होता है गांठ, और नी माने नहीं है जिनके ग्रंथि। तो ग्रंथि कौन सी कि अंदर में मोह की ग्रंथि, देह में अपनेपन का अभिप्राय, और देह में अपनेपन का अभिप्राय होगा तो जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा कि जिसमें यह अपनापन नहीं करेगा, और देह में एकत्व टूटा तो जगत का ऐसा कोई पदार्थ नहीं होगा कि जिसमें एकत्व टूटे नहीं। समझ में आएगी नहीं आ गया? ये बहुत बड़ा पाप है देह को आत्मा मानना, देह दृष्टि, देह में अपनेपन का अभिप्राय, इसको बोलते हैं मिथ्या ग्रंथि, मिथ्यात्व की ग्रंथि। तो जो गांठ है ना कि सबसे निर्ग्रंथ का पंथ, तो निर्ग्रंथ का पंथ क्या है कि निर्ग्रंथ का पंथ यह है कि ये जो मोह की ग्रंथि है इसे तोड़ो। कि कैसे मोह की ग्रंथि को तोड़े कि सबसे पहले अभिप्राय की विपरीतता रूप मोह ग्रंथि माने दर्शन मोह की ग्रंथि टूटती है। पहले किसका अभाव होता है कि पहले मिथ्यात्व का अभाव होता है, पहले दर्शन मोह की ग्रंथि टूटती है, और दर्शन मोह की ग्रंथि टूटने के बाद यद्यपि चारित्र मोह तो मरा हुआ सा हो जाता है, लेकिन वो भी राग की गांठ तो है ही। भले ही मिथ्यात्व के समान अनंत संसार का कारण नहीं भी हो, लेकिन मुक्ति का कारण तो नहीं है। ठीक है, तो उस ग्रंथि को भी तोड़ना। तो उस ग्रंथि को तोड़ने का उपाय क्या? यही उपाय है कि काया की विसारी माया स्वरूपे समाया, कि शरीर आदि पर द्रव्यों से अपने को भिन्न अनुभव करता हुआ जो ज्ञानी अपने स्वरूप में समाहित तो हो गया, वो निर्ग्रंथ हो गया। और उस निर्ग्रंथ का जो पंथ है, मतलब निर्ग्रंथ ने जो मार्ग अनुसरण किया, जिस मार्ग का अनुसरण किया और अपनी वाणी के द्वारा जो मार्ग बताया, कि वो निर्ग्रंथ का पंथ ही भव अंत का उपाय है। अब निर्ग्रंथ तीन तरह से होते हैं, समझो जरा। निर्ग्रंथ माने क्या? कि निर्ग्रंथ शब्द सामान्यतः तो मुनिराज के अर्थ में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उनकी अंतर्बाह्य निर्ग्रंथता होती है। अंतरंग में भी निर्ग्रंथता होती है मुनिराज को, और बाहिरंग में भी उनकी कैसी होती है? निर्ग्रंथ दशा होती है। लेकिन नियम सार में शुद्ध भाव अधिकार के अंदर आत्मा के स्वरूप की चर्चा करते हुए वहां पर आत्मा को निर्ग्रंथ कहा। सुनना जरा ध्यान से, निर्ग्रंथ के बहुत अर्थ होते हैं। कि भगवान आत्मा 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग स्वरूप होने से, क्या शब्द का प्रयोग किया? 24 प्रकार के परिग्रह के त्याग स्वरूप है भगवान आत्मा। भगवान आत्मा में, त्रिकाली शुद्ध आत्मा में 24 प्रकार के परिग्रह का ग्रहण है ही नहीं। ऐसे स्वभाव को, निर्ग्रंथ स्वरूप स्वभाव को जिसने लक्ष्यगत किया, तो सबसे पहले मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की ग्रंथि टूटी। ठीक है, तो वो दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ हुआ। क्या हुआ? किस अपेक्षा से निर्ग्रंथ हुआ? कि दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ हुआ। अभी अपना 320 गाथा चलती है ना, उसमें भी आएगा दृष्टि मोक्ष वगैरह की चर्चा आएगी। ठीक है, तो वो दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ हो गया। अब आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ा तो चारित्र मोह की गांठ भी टूटी। और जब चारित्र मोह की गांठ तीन कसाई चौकड़ी के अभाव तक की दशा के लिए टूटती है, तब बहिरंग में किसी प्रकार का कोई परिग्रह उनके शरीर पर देखा नहीं जाता। उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ मुनि दशा। और केवली परमात्मा हो गए, कि केवली परमात्मा तो सर्वथा निर्ग्रंथ हो ही गए, वहां तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। यानी कहने का मतलब क्या? कि निर्ग्रंथ द्रव्य स्वभाव निर्ग्रंथ है। पहली बात, द्रव्य स्वभाव निर्ग्रंथ है, तो निर्ग्रंथ का पंथ, अब इसका अर्थ लेंगे अपन, इस तरह से अर्थ घटित करेंगे इसमें अपन, कि द्रव्य स्वभाव का पंथ अर्थात द्रव्य स्वभाव के आश्रय में परिणमना। पंथ माने क्या होता है? महावीर भगवान का पंथ। तो महावीर भगवान के पंथ का मतलब क्या हुआ? कि महावीर भगवान ने जो कहा, महावीर भगवान के उस मार्ग का अनुसरण करना, वो उसका पंथ है। तो ये त्रिकाली द्रव्य स्वभाव भी निर्ग्रंथ है ना। तो एक निर्ग्रंथ के पंथ का पहला 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 आंसर क्या होगा? इसका पहला स्वरूप क्या होगा? कि उस निर्ग्रंथ परमात्मा जो अपना भगवान आत्मा है, उस निर्ग्रंथ परमात्मा का आश्रय करके उसके उसका अनुसरण करना, अर्थात उस निर्ग्रंथ स्वभाव के मार्ग में प्रवर्तन करना, वो पहला निर्ग्रंथ है। और जब ऐसा प्रवर्तन होता है तो पहले कौन सी निर्ग्रंथता प्रकट होती है? कि पहले चतुर्थ गुणस्थान में सम्यक दर्शन अर्थात मिथ्यात्व की अपेक्षा से वो निर्ग्रंथ हो गया। यानी मिथ्यात्व की ग्रंथि वहां नहीं रही, अभी चारित्र का दोष है लेकिन मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं रही। और मिथ्यात्व की ग्रंथि का अभाव हो जाना, ये भी कोई कम कमाल की बात नहीं है। देखो, सम्यक दर्शन हुआ ना, ये पहली निर्ग्रंथता हुई, निर्ग्रंथ स्वभाव की भेंट की, तो उसको पहले सम्यक दर्शन की गिफ्ट मिली। राजा से मिलने जाए तो राजा से क्या भेंट मिली कि निर्ग्रंथ राजा के पास गया, वर्तमान प्रणाम, निर्ग्रंथ राजा के पास गया तो उसे सम्यक दर्शन रूपी निर्ग्रंथता की भेंट मिली। अभी अभी ग्रस्त घर गृहस्थी में हो सकता है, अभी चक्रवर्ती के पद में हो सकता है, लेकिन दृष्टि अपेक्षा से निर्ग्रंथ हो गया। अरे जैन शासन समय सार की 15 नंबर की गाथा में ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा को पश्यति जिन शासनम सर्वम, वो जीवंत जिन शासन है। क्यों? क्योंकि जिनेंद्र भगवान का वीतराग परिणाम रूप वीतराग शासन उसकी परिणति में प्रकट हो गया। आचार्य भगवान ने जीवंत जिन शासन कह दिया, पश्यति जिन शासनम सर्वम। अब इसकी महिमा नहीं आती अपने को कि समय दर्शन हुआ तो क्या, अभी तो बहुत बाकी है। बाकी है वो बात बराबर है, लेकिन वो सम्यक दृष्टि सोचेगा बाकी है। अपने को तो अगर सम्यक दर्शन किसी को हुआ तो अपने को तो कैसा अवभाव आता है उनके प्रति रहना चाहिए। कहो निर्ग्रंथ के मार्ग में, निर्ग्रंथ के पंथ में, निर्ग्रंथ के मोक्ष भव अंत के पंथ में आपने पहला कदम रखा। पहला कदम ही निर्ग्रंथता की ओर बढ़ता हुआ पहला कदम क्या है कि मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़े। और देखो एक बात और समझो कि मिथ्यात्व की ग्रंथि अगर टूट गई, यद्यपि सुनना ध्यान से, यद्यपि चारित्र मोह की ग्रंथि को तोड़ने में मिथ्यात्व की ग्रंथि को तोड़ने से कहीं अधिक पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ श्रद्धा का ज्यादा कि चारित्र का ज्यादा? चारित्र की पूर्णता श्रद्धा, श्रद्धा तो एक ही झटके में पूर्ण हो गई, चारित्र का पुरुषार्थ ज्यादा है। ज्यादा होने पर भी जब तक मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं टूटेगी, चारित्र मोह की ग्रंथि टूटने वाली नहीं है। मिथ्या और मिथ्यात्व की ग्रंथि जिसको टूट गई तो उसको आगे मार्ग का पता पड़ गया कि मार्ग क्या है। गुरुदेव श्री से ज्ञान गोष्ठी नाम का एक ग्रंथ है गुरुदेव की तत्व चर्चा का, तो उसमें एक प्रश्न किया बहुत अच्छा कि साहेब सम्यक दर्शन तो हमको हो गया, अब बताओ हम क्या करें। क्या प्रश्न किया? सम्यक दर्शन तो हो गया हमको, अब बताओ हम क्या करें। तो गुरुदेव ने उत्तर दिया कि तुम्हारा प्रश्न ही बताता है कि तुमको अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जिसको सम्यक दर्शन हो जाए, जिसको मिथ्यात्व गल जाए, उसको अब मैं क्या करूं, ये प्रश्न उठता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा मुक्ति मार्ग हथेली पे रखे हुए आंवले की भांति उस ज्ञानी धर्मात्मा के अंतर में बसता है। ठीक है, तो ये निर्ग्रंथ का पंथ माने त्रिकाली स्वभाव से लेकर, त्रिकाली स्वभाव निर्ग्रंथता का आश्रयभूत तत्व, उसके आश्रय से निर्ग्रंथता प्रकट हुई। पहले चतुर्थ गुणस्थान की निर्ग्रंथता, पंचम गुणस्थान की निर्ग्रंथता, ये अंतरंग निर्ग्रंथता है, अभी बहिरंग निर्ग्रंथता नहीं है। लेकिन अब मुनि दशा आने पर अंतरंग और बहिरंग निर्ग्रंथता, और उसके बाद सर्वज्ञ परमात्मा की निर्ग्रंथता। कहते हैं चाहे सर्वज्ञ परमात्मा हो, चाहे मुनि भगवंत हो, चाहे श्रावक समय दृष्टि हो, अथवा चाहे अविरत समय दृष्टि हो, सभी ज्ञानी धर्मात्माओं का पंथ एक ही प्रकार का है। गति में अंतर है, स्पीड का अंतर है, शुद्धता का अंतर है, मात्रा का अंतर है, जाति का कोई अंतर नहीं है। आ गया? इसलिए सभी, इन सभी ज्ञानी धर्मात्माओं का पंथ, निर्ग्रंथ का पंथ माने तीर्थंकर परमात्मा से लेकर सम्यक दृष्टि धर्मात्मा तक, और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा से लेकर तीर्थंकर परमात्मा तक, ये सभी निर्ग्रंथ अपनी अपनी भूमिका के योग्य, इतना समझ लेना भाई। तो इनका पंथ, अब इनका पंथ क्या है? पंथ माने क्या? कि जिस मार्ग से चल करके इन्होंने निर्ग्रंथता को प्राप्त किया, तो किस मार्ग से चल करके निर्ग्रंथता को प्राप्त किया? उछल कूद की बाहर में, क्या किया कि अरे अंतर स्वरूप की दृष्टि की, जड़ से भिन्नता की, जड़ से और जड़ और चैतन्य की भिन्नता का भेद विज्ञान का प्रयोग, इतना तीक्ष्ण प्रयोग किया कि मिथ्यात्व की ग्रंथि टूट गई। वो काम किया इन्होंने। तो इन सभी धर्मात्माओं ने जो किया वो हुआ पंथ, एक बात, अथवा उन्होंने जो बताया, क्योंकि जो उन्होंने किया जगत के सामने भी उन्होंने वही मार्ग रखा, चाहे वो तीर्थंकर की वाणी में आया हुआ मार्ग हो, वीतरागी संतों की वाणी में लेखन में आया हुआ मार्ग हो, श्रावक सम्यक दृष्टि की वाणी में आया हुआ मार्ग हो, चाहे ज्ञानी धर्मात्मा सम्यक दृष्टि की वाणी में आया हुआ मार्ग हो, सभी मार्ग, सभी ज्ञानी धर्मात्माओं का मार्ग, दिशा निर्देश, निर्ग्रंथता की प्राप्ति का उपदेश एक ही प्रकार का होता है। और वो पंत है, कहते वो ही भव अंत का उपाय है। इसका मतलब क्या कि भव अंत के उपाय में सच्चा निमित्त कौन होता है, इसका भी यहां पर ज्ञान करा दिया। क्या ज्ञान करा दिया कि जिसके मिथ्यात्व की ग्रंथि नहीं टूटी, जिसको आत्मा की उपलब्धि नहीं हुई, वो अन्य को भव अंत का निमित्त नहीं हो सकता। अपन लोग परस्पर में सत्संग कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देशना लब्धि का प्रकरण, देशना लब्धि का प्रकरण तो गुरुदेव जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, बहन श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्मा, इनका जो योग अपने को बना ना कि देशना लब्धि वो थी। अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, अपन लोग सब लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। क्यों, क्या करें कि ज्ञानी धर्मात्मा का अगर अपने को योग नहीं हो वर्तमान में, तो फिर क्या करें कि उनको सिर मस्तक पर रखते हुए, एक बात ध्यान रखना, ज्ञानी की उपेक्षा करके मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। श्रीमद राजचंद्र जी ने अपनी मति कल्पना से मार्ग में चलने को स्वच्छंदता नाम का महादोष कहा है। लोक में होता है, लोक में हम अपनी मति कल्पना से नहीं चलते। एक डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर, अब मैं कई बार उदाहरण देता हूं, ये सुना हो नहीं सुना हो मुझे पता नहीं आपने, लेकिन ये उदाहरण देता हूं कि देखो एक डॉक्टर होता है और अपने को कोई रोग हो, तो रोग अपने को है ना, ठीक है, डॉक्टर को फीस किसने दी? जब रोग अपने को, तो फीस भी अपने को दी, अपन नहीं दी। डॉक्टर ने दवा लिखी, दवा कौन लाया? अपन लाए, अपन लाए ना, दवा भी अपन लाए, पैसा अपन ने खर्च किया दवा का, भले लाखों हजारों रुपए की दवा हो, और डॉक्टर कहता है कि ये दवा ऐसे लेना, ये दवा ऐसे लेना, ये दवा ऐसे लेना, ये दवा खाली पेट लेना, और ये दवा कभी भी खाली पेट नहीं लेना। हम भी बड़े सिर चढ़े, हमने कहा अच्छा, बीमारी मुझे, डॉक्टर को फीस मैंने दी, दवा मैं लेकर के आया, और खाना किसको है? कि मुझे, खाना भी मुझे ही है, और ये निर्णय करेगा डॉक्टर कि कब खाना, कौन सी खाना, कैसे खाना, कम नहीं खाना। तो हमने क्या किया पता है, कि डॉक्टर ने कहा था ना कि ये गोली कभी भी खाली पेट नहीं लेना, तो खाली पेट वाली तो रखी अलग, और कभी भी खाली पेट नहीं लेना ये जो दवा की डॉक्टर ने कही थी। तो उन्होंने कहा कि आज डॉक्टर को दिखाते हैं कि तू निर्णय नहीं करेगा, ये निर्णय हम करेंगे कि हमको कब क्या खाना है। और हमने जो पेट, जो दवा खाना खाकर खानी थी, डॉक्टर की सलाह का उसको उल्लंघन करके हमने वो दवा खा ली, तो फिर क्या हुआ कि बस अगली दवा खाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी है? क्योंकि चार आदमी आ गए, फिर बाकी जो कुछ हुआ सो आप जानते हैं, मुझे पता नहीं है, बराबर है। तो क्यों भाई, कि भाई उस रोग का विशेषज्ञ वो है, वो रोग कैसे मिटेगा, उस रोग में किस तरह की दवा ली जानी चाहिए, उसका विशेषज्ञ। रोग भले ही तुम्हें है, लेकिन रोग के विशेषज्ञ तुम नहीं हो। रोग कैसे मिटेगा, इसके विशेषज्ञ तुम नहीं हो। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। क्या लिखा, क्या लिखा, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। तो अपन जो अपनी मति कल्पना से मार्ग को प्राप्त करना चाहता, आज तक मार्ग क्यों नहीं प्राप्त हुआ अपने को, ये स्वच्छंद नाम का महादोष। अपनी मति कल्पना से हम मार्ग प्राप्त करना चाहते हैं। ज्ञानी ने मार्ग का जिस तरह से निर्देशन किया है उस विधि से मार्ग की आराधन करे और मार्ग की उपलब्धि ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता। और ज्ञानी की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी मति कल्पना से मार्ग की आराधना करना चाहे, कहते हैं सबसे पहले तो तेरे में स्वच्छंदता का दोष खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि तुझे ज्ञानी के अभिप्राय से भी ज्यादा अपना अभिप्राय मुख्य हुआ। तो ज्ञानी की अवगणना हुई कि नहीं हुई? हाँ, ज्ञानी की अवगणना हुई। तो ज्ञानी की अवगणना हुई तो मार्ग प्राप्त कर लोगे। मार्ग किसका है? ये मार्ग का निर्देशन किसने किया? इस मार्ग पर चले कौन? जो वो ज्ञानी कह रहे हैं ना, वो ज्ञानी इस मार्ग को प्राप्त करके उन्होंने जिस विधि से प्राप्त किया है, उन्होंने जो प्रैक्टिकल किया है, वो प्रैक्टिकल हमको बता रहे हैं। और उस विधि से चलेंगे तो मार्ग प्राप्त हो जाएगा। और अपनी मति कल्पना से किया तो क्या? अपनी मति कल्पना से मार्ग की आराधना करने का भाव ये स्वच्छंदता नाम का महादोष है। श्रीमद जी की भाषा में पत्रांक पढ़ लेना उठा उठा के। आज तक नहीं हुआ ना? समोसण में अनंत बार गया तो क्यों नहीं हुआ? केवली भगवान थे वहां तो। इस भाव में तो अपने को गुरुदेव मिले, इसके पहले भी तो अपने को अनंत बार ज्ञानी मिले होंगे, अनंत बार मुनियों के संग में भी अपन रहे होंगे, तीर्थंकर के समोसण में भी अपन रहे होंगे। आखिर मार्ग प्राप्त नहीं हुआ तो उसके पीछे विचार तो करना है ना, कि उसमें ज्ञानियों की गलती रही कि हमारी गलती रही। जो ठोट बच्चा होता है ना, जब उसका रिजल्ट खराब आता है तो अपनी गलती नहीं मानता, वो क्या कहता है? वो गुरुजी ने पढ़ाया नहीं हमको। तो अच्छा, गुरुजी ने नहीं पढ़ाया तो तेरी क्लास में मेरिट में आया, उसका क्या हुआ फिर? है ना, हम कैसे मार्ग में आगे बढ़े, ये मार्ग निर्देशन। इसलिए इन्होंने कहा यहां पर, क्या कहा? कि निर्ग्रंथ नो पंथ भव अंत नो उपाय छे। बस ये निर्ग्रंथ का पंथ भव अंत का उपाय है, यही एकमात्र उपाय है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्राप्त करके प्राप्त करने की विधि अपने को बताई है। ठीक है, तो अपने को, अपने ज्ञानी धर्मात्माओं को सर्वोपरि रखकर उनकी आज्ञानुवर्ती होकर के वर्तना पड़ेगा। ये कोई गुलामी की बात नहीं है, लेकिन ज्ञानी धर्मात्मा की पहचान में, ज्ञानी धर्मात्मा के मार्ग की पहचान में अपने ज्ञान की अतिशयता है, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है, ये ध्यान देना। क्योंकि अभी प्रवचन सार में काग्नि का आचार्य देव ने कि जो अरियंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपनी आत्मा को जानता है, उसका मोक्ष है को प्राप्त होता है। तो अरियंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानने वाला अपनी आत्मा को जानता है तो निमित्ताधीन दृष्टि बताई हो, निमित्ताधीन दृष्टि है वहां पर। अरे तुम सीधे सीधे नहीं जान सकते तो जिनको प्रकट हो गया उनको पकड़ो, है ना। तो ये निमित्ताधीन दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी का मार्ग और ज्ञानी, इसका निर्णय करने में भी ज्ञान की कितनी सावधानी है। हमको वो ज्ञान की स्वाधी, माने ज्ञान का व्यवसाय क्यों नहीं दिखता अपने को? ज्ञान का व्यवसाय दिखना चाहिए ना, निमित्ताधीन दृष्टि। अरे फिर तो निमित्ताधीन दृष्टि हो गई, निमित्ताधीन दृष्टि नहीं हुई बरू, अपने ज्ञान की जागृति है। आगे देखो, बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छा दोहा है। निर्ग्रंथनो पंथ भव अंतनो उपाय छे, ये पहला आठ काव्य का पहला छंद। अब आठ काव्य का दूसरा देखो अगला। देह जीव एक रूपे भासे छे अज्ञान बड़े, क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाये छे। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु, देहनो स्वभाव जीव पद मां जणाये छे। ये अभी जो लाइन सुनी ना अपन ने, ये देह का स्वभाव जीव पद में जणाये छे, ये लाइन सुनकर के आपको गुरुदेव के प्रवचन में कोई प्रसंग याद आता है? राजकोट के एक भाई थे, शायद मूलजी भाई क्या नाम था उनका, ऐसा कुछ नाम बताते थे गुरुदेव, ठीक है। हाँ तो वो बताते थे, तो जो अंत में देखो कैसे कैसे जीव, देखो मतलब कितने संस्कार लेकर के गुरुदेव के प्रताप से कितने जीवों के संस्कार जागृत हुए होंगे। देह का अंतिम समय, जाने वाले ये नक्की हो गया कि जाने वाले, तो बुलाया लोग कहे, अब लोग तो बोलेंगे, लोग तो बोलेंगे भाई डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लाल भाई को बुलाओ, गुरुदेव के प्रवचन में है सारे प्रसंग, लाल भाई को बुलाओ, लाल भाई को बुलाओ। तो लाल भाई आए, लालू भाई आए, आए तो उनने क्या करा, उनने यही यही पद बोला उनके सामने, है ना। तो ये बोला कि जीवनी उत्पत्ति अने राग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पद मां जनाई छे। तो ठीक है, ये बात तो बराबर अपनी जगह बराबर है बात है, लेकिन उससे भी आगे बात है। वो कहते हैं कि ए भाई, जीव पद में ये जानने में आता है कि जीव में जीव जानने में आता है। यानी कहने का मतलब क्या कि देखो ज्ञानी के वचनों का प्रभाव, ज्ञानी के वचनों का कितना बल जीव में आ जाए कि देह की छूटने की तैयारी हो और ऐसे उद्गार निकले कि जीव पद में जनाए छे, ये जनाता है जीव कि जान कि जीव जीव अपने को जानता है, ऐसा करके उन्होंने उस बात को, मैंने इससे भी एक कदम आगे, ये होता है ना पहले 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 नंबर में स्टेज आती है क्या, अरे भैया आत्मा का धर्म तो देह में जान, देह का धर्म तो आत्मा को जानने में आता है, जानने में आता है। लेकिन क्या देह का धर्म आत्मा को जानने में आता है कि आत्मा का ज्ञान आत्मा को जानने में आता है, ये इसके आगे की स्टेप, पहली स्टेप ये, इसके आगे की स्टेप तक वहां तक वो ले गए कि गुरुदेव ने जिसके समझ लीजिए मतलब अब अंदर परिणमन बाहिरंग परिणमन उसकी बात नहीं, लेकिन जीव गुरुदेव के वचन सुनकर ज्ञानी के वचन सुनकर मरण के काल में भी कैसी दृढ़ता के साथ खड़ा रह सकता है अगर परिणमन हो जाए तो, हाँ वचनों के बल पर भी इतना खड़ा रह सकता है तो अगर उन वचनों का अंदर परिणमन हो जाए तो फिर क्या कहना है, सोचो जरा इस एंगल से सोचो। ऐसे कितने जीव हुए होंगे कि जो इस मार्ग में आकर के जिन्होंने लाभ लिया ज्ञानी धर्मात्माओं का, है ना, और ऐसा ऐसा काम अपना, मैंने दृढ़ता तो रही नहीं इतनी दृढ़ता, आज इतनी, अभी तो अपन मृत्यु का सुन ले, अभी डॉक्टर अभी कोई बोल दे कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वो सब अपन ने देखा है, अभी दो साल खूब अच्छे भुगते हैं अपन लोगों ने, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, अभी समझने में बहुत आराम आसानी से समझ में आता है। उस समय के परिणामों की दृढ़ता का विचार करो अपना कि कितनी दृढ़ता रही थी। आ गया, अभी यहां देखो कि यहां क्या कहते हैं, यहां पे देह जीव एक रूप भासे छे अज्ञान बड़े, क्या कहा कि ये देह और जीव तुझे एक रूप भासित होते हैं ना, ये किस वजह से भासित होते हैं, अज्ञान बड़े, अज्ञान माने तुझे आत्मा का और जड़ का भेद ज्ञान नहीं है, जड़ और चेतन का भेद ज्ञान नहीं होना, अर्थात जड़ और चेतन की एक रूपता भाषित होना, उसका नाम अज्ञान। अज्ञानी के कोई सिंह पूंछ नहीं होते, और ज्ञानी हो जाए कोई जीव तो उसमें क्या होता है, ज्ञानी है मतलब यहां अब ज्ञानी हो जाए कोई तो, ज्ञानी हो जाए तो क्या हो जाएगा, अभिप्राय की क्रांति है, मिथ्या दर्शन से समय दर्शन हुआ, ठीक है। अब मिथ्या दर्शन से समय दर्शन हुआ किसी मनुष्य को हुआ समझ लो, तो मनुष्य को मिथ्या दर्शन से समय दर्शन हुआ तो क्या होगा, बाहर में क्या होगा, मान लो व्यापार धंधा करता है तो क्या करेगा, वैसा ही व्यापार धंधा करता हुआ दिखेगा, खाना खाता है तो वैसे टेबल पे जैसे बैठता है वैसे बैठेगा, समय दर्शन होने के बाद कुछ अलग तरीके से बैठेगा, हाँ केवल क्या है, क्या फिर ये अभिप्राय की वो क्रांति है कि जिस क्रांति में पंच परावर्तन रूप संसार जल करके भस्म हो गया, पंच परावर्तन की गिनती में से निकल गया वो ज्ञानी, वो ये वो क्रांति है। ये क्रांति दिखती नहीं है अपने को, लगता है अपने को लगता है क्यों, हम हमारे जो मापने के गज है ना, हम अपने गज से ज्ञानी को मापते हैं। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि एक बार कपड़ा लेके आए पिताजी कपड़ा लेके आए, तो पुराने ज़माने में मीटर वीटर तो होते नहीं थे, तो हाथ से ऐसे कपड़ा नापते थे, तो 50 हाथ कपड़ा लेके आए। उन्होंने पत्नी से बोला कि 50 हाथ कपड़ा ले आया हूँ, सब छोकरों को ड्रेस वगैरह बना देना। इतने में एक छोटा लड़का वो कपड़े के थान को लेकर के नापने लगा, तो नापने लगा तो कितना निकला वो कि 100 हाथ निकला। तो उन्होंने कहा पिताजी दूसरों को उपदेश देते हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खुद झूठ बोलते हो। क्या मतलब, आप कह रहे हो 50 हाथ कपड़ा लाया, मैंने नापा, वो तो 100 हाथ है। पिताजी ने कहा बेटा हमारे व्यापार के नाप में तेरे हाथ काम नहीं आते, है ना। ज्ञानी को मापने का गज दूसरा होता है, अज्ञानी अपने गज से ज्ञानी को मापना चाहे, अपनी प्रवृत्ति से ज्ञानी की प्रवृत्ति का माप करे कि ये मैं हम ज्ञान हम भी हम करते ज्ञानी भी ऐसा करते हम भी ऐसा करते ज्ञानी भी ऐसा करते हम भी बहुत भूल में हो अभी। वो अलग है, पूरा वर्तन ही अलग हो गया होता है। दुनिया में देखो नदी में नाव होती है तो तिरती है, और नाव में नदी होती है, समझ गए, नाव में नदी का मतलब क्या है, हैं, ये नाव में पानी आ जाए ना तो नाव में नदी आई, तो नाव में नदी हो तो नाव डूबती है, और नदी में नाव हो तो क्या होता है, तिरती है। ज्ञानी की नदी, ज्ञानी की नाव नदी में है और अज्ञानी की नाव में नदी है। ये अंतर कौन दिखेगा, क्योंकि लोगों को तो ये दिखेगा दोनों नाव नाव ही चल रही है दोनों, नहीं ये पता नहीं एक छेद वाली नाव है, अभी थोड़ी देर बाद दिखेगी नहीं तुमको। इसी तरह ये त्रस्पर्याय है, मिथ्यात्व का छेद डला है इसमें, है ना, मिथ्यात्व का छेद है ना, कि त्रस्पर्याय में थोड़े काल दिख रहे हो, वो काल भी अगर ये मिथ्यात्व का छेद बंद नहीं किया तो वो काल भी आ जाएगा कि अभी तो हम दिख रहे हैं किसी न किसी गति में, बाद में उस अनंत के बीच में कहां जाके बैठे होंगे पता नहीं पड़ेगा। नदी में नाव डूब गई, अंतर आया समझ में। तो ये कह रहे हैं अज्ञान के कारण तुझे देह और आत्मा, देखो लिखा ना, देह जीव एक रूप भासे छे अज्ञान वड़े, ये नहीं लिखा मेरे कर्म का उदय है इसलिए मुझे ऐसा भाषित होता है, अज्ञान के द्वारा। और क्रियानी प्रवृत्ति, और जब शरीर और आत्मा एक भाषित होता है तो क्रिया की प्रवृत्ति भी वैसी होती, क्या मतलब, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, देहासित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, है ना। अभी लोग अब क्या है कि जड़ की क्रिया, अभी जड़ की क्रिया शब्द ही को लोग कहते हैं कि तो जड़ की क्रिया शब्द ही सोनगढ़ ने चलाया, जड़ की क्रिया शब्द ही नहीं था पहले। अरे भले आदमी भजन तो पढ़ो, देहाश्रित करी क्रिया आपको मानत शिवमग चारी रे, आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, कि अरे तूने अपनी आत्मा को नहीं जाना तू कैसा ज्ञानधारी है। मत देहासित क्रिया, देहासित करी क्रिया, ये करी का मतलब देखो, यहां थोड़ा अर्थ समझना, देहासित करी क्रिया आपको, ये करी का मतलब करने के अर्थ में नहीं है, देहासित करी मैंने देहासित क्रियाओं से, करी का मतलब देहासित क्रिया करके, ऐसा नहीं, क्योंकि देह की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, लेकिन देह की क्रियाओं से अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, अपने को धर्मात्मा मानता है। तो उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं, भजनकार कविराज कहते हैं कि आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानधारी रे, कि तूने तो क्यों, क्योंकि अगर तू अपनी आत्मा को आत्मा जान लेता, अगर तुझे आत्मा आत्मा के रूप में जानने में आ जाता तो शरीर तुझे पर रूप में जानने में आता, और शरीर पर रूप में जानने में आता तो शरीर की कोई क्रिया तुझे आत्मा की क्रिया भासित नहीं होती, और शरीर की किसी क्रिया से तू मोक्ष मार्ग अपने को नहीं मानता। लेकिन चूंकि अज्ञान के कारण तुझे आत्मा और शरीर एक ही भासित होता है, और आत्मा और शरीर एक भासित होने की वजह से शरीर की क्रियाओं से अपने को मोक्ष मार्गी मानता है। तो वो यहां पे दूसरी लाइन में इन्होंने कहा कि क्रियानी प्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय छे। अगला दोहा में लिखा जीवनी उत्पत्ति रूप रोग, शोक, दुख, मृत्यु, जीव की उत्पत्ति। उत्पत्ति माने शरीर के साथ जीव का संयोग होना, उसको जीव की उत्पत्ति बोलते हैं। और शरीर के साथ का संयोग छूट जाना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जीव की मृत्यु, व्यवहार से बोलते हैं। ठीक है, तो जीव की उत्पत्ति, मृत्यु, और क्या होता है बीच में? कि रोग, शोक, दुख इत्यादि देह का स्वभाव है। किसका स्वभाव है? उत्पत्ति होना। तो उत्पत्ति किसकी हुई? शरीर की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति कही जाती है। सचमुच में आत्मा उत्पन्न नहीं होता, सच में तो शरीर भी अवस्था से अवस्थांतर हुआ। पहले जो परमाणु अन्य अन्य रूप में थे, आज वे परमाणु शरीर रूप से उत्पन्न होकर के हमारे साथ में संयोग संबंध कर बैठे। उसको बोलते हैं जीव की उत्पत्ति अथवा देह का, ये देह का, ये उत्पत्ति होना के देह का स्वभाव है। गुरुदेव श्री ने इष्टोपदेश के एक प्रवचन है, इष्टोपदेश का नंबर ख्याल नहीं है, लेकिन इतना जोरदार प्रवचन है कि जिसमें उन्होंने देह के इस समय देह के परमाणु, पूर्व में कैसे कैसे परमाणु हो सकते थे या हो सकते हैं जो वर्तमान में हमारे शरीर रूप आए, गुरुदेव ने कहा इसमें बिच्छू के डंक के परमाणु हो सकते हैं। जिस मल मूत्रादि के ढेर से अपन लोग घृणा करते हैं, हो सकता है उसमें से ही बहुत से परमाणु वर्तमान में हमारे शरीर रूप प्रण में। आप वो प्रवचन पढ़े, वास्तव में इतना वैराग्य का रस टपकता है उस प्रवचन में। क्या है, अभी हम शरीर की सुंदरता में रीझ जाते हैं, अभी हम शरीर में रोग हो गया तो अरे हाय 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 हाय। जन्म अपने यहां किसी का जन्म हो तो जन्म हुआ तो क्या हुआ? किसी जीव के साथ में शरीर का संयोग हुआ। मरण हुआ तो क्या हुआ? कि मरण हुआ तो क्या हुआ? कि कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? कि जीव के साथ जो शरीर संबंध रूप होकर के आया था, वो आज संबंध विच्छेद करके चला गया, उसका नाम मरण बोलते हैं, है ना। प्रतिकूल परिस्थिति कोई आ जावे बाहर में, लौकिक में अपने जीवन में शोक, अनेक प्रकार के रोग, तो रोग हो गया तो क्या बड़ी बात हुई? शरीर में कितने रोग है, भाव पावर पढ़ लो, हाँ? एक एक रोम में छान में रोग है। पूरे शरीर में रोगों की संख्या कितनी? 5 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, वो हमारे जितना जितना पाप का उदय होता है उतने उतने रोग प्रकट हो जाते हैं। शरीर तो रोग की मूर्ति है, और आत्मा क्या है? आत्मा वास्तव में इनका करने वाला नहीं, तो कहेंगे कि जानता है। मैंने ये सारे जो देह के धर्म है ना, कि ये सारे देह के धर्म, ये देह का स्वरूप माने उत्पन्न होना, नाश हो जाना, रोग होना, शोक होना, और भी अनेक अनेक प्रकार का, कि ये सब देह का स्वभाव, कि तेरा स्वभाव नहीं है। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाशमान। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि तन उपजत उपजने दो, कि तन नशत होने दो, कोई तकलीफ नहीं। गलती कहां हो गई? कि तन उपजत अपनी उपज जान और तन नशत आपको नाश मान, ये गलती हो गई। शरीर की उत्पत्ति हुई और शरीर का नाश हुआ, क्यों? क्योंकि जो परमाणु अन्य अन्य रूप थे वे अभी शरीर रूप होकर के आए, और शरीर रूप होकर के आकर के कुछ काल जीव के साथ रहे, जब उनका अंत समय आया तो इन परमाणुओं का राख रूप परिणमने का स्वकाल है, हो गया। गलती क्या करी हमने इसमें? कि गलती ये की उत्पत्ति होने से अपनी उत्पत्ति मानी और नाश होने से अपना नाश होना माना, जबकि आत्मा तो उत्पत्ति को भी जानने वाला है, नाश को भी जानने वाला है, रोग आया तो भी जानने वाला है, शोक आया तो भी जानने वाला है। ठीक है, जानने वाला नहीं रहकर ये मुझे हुआ, मैं इनका जानने वाला हूं, ये मेरे नहीं तो मैं इनका जानने वाला हूं। अरे सचमुच में तो इनका भी जानने वाला क्या, ज्ञान की पर्याय में झलकने वाले ऐसे गेयाकार रूप अपनी ज्ञान की पर्याय का ही जानने वाला हूं, लेकिन उपचार से बोला जाएगा कि इनका जानने वाला हूं, क्या तकलीफ है। ये हम नहीं रहते और ये नहीं रह करके हम लोग बस वही करते रहते, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, क्या हो गया। तो ये यहां पे कहा देखो, जीवनी उत्पत्ति रोग शोक दुख मृत्यु देहनो स्वभाव जीव पद्मा जनाय छे, ये सब का सब देह का स्वरूप है, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। जिससे आत्मा का कुछ लेना देना नहीं, आत्मा उसमें माथा मारता है, अनंत काल से यही काम हो रहा है। आत्मा को अपनी संभाल की फुर्सत, अपनी संभाल की फुर्सत नहीं, और 24 घंटे देहार्थ जीवन जीता है, 24 घंटे देह के लिए समर्पण है ना। जिस देह की स्थिति इस भव में 100 वर्ष की भी नहीं है, और आत्मा कब तक रहने वाला है, आत्मा अनंत काल तक रहने वाला है। जो अनंत काल तक रहने वाला उसकी चिंता नहीं, और जो 100 साल भी मुश्किल से रहेगा और उसमें से भी कितने निकल गए, चिंता किसकी है, उसी देह की चिंता है कि यह है अज्ञान का प्रकार। मैंने हमें आत्मा अपना भाषित हुआ कि शरीर अपना भाषित हुआ कि इसका मूल्यांकन कैसा करें हम, कि मूल्यांकन ऐसे होता है कि जो शरीर अब 10-20 साल अपने साथ रहने वाला है, संयोग रूप में कितना रहने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 10 साल, 20 साल, 15, 25 साल, 30 साल, इससे ज्यादा तो नहीं ना, ठीक है। और आत्मा इस भव के बाद अगले भव में यही आत्मा है क्या, बदल जाएगा, यही आत्मा जो अभी मैं हूं वही आत्मा अगले भव में है या दूसरा आत्मा हो जाएगा, शरीर दूसरा हो जाएगा, आत्मा वो का वही रहने वाला है। तो जो ये वर्तमान में मैं हूं वही मैं भविष्य में रहने वाला हूं, मैं वही आत्मा हूं, अपने को इस बात का भरोसा आवे तो आत्मार्थ के लिए हमारे कदम बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, और नहीं बढ़े अगर तो फिर हमने आत्मार्थ को साधा है या हम आत्मार्थ को साधने के मार्ग में हैं, ये कैसे कहें, है ना। ये बहुत देखो, एक एक पद एक एक बात अपने आत्मा के लक्ष्य से विचार करने की बात है भैया, किसी को सुनने सुनाने की बात नहीं है। सच्चाई तो यह है कि यह सब अपने चिंतन के लिए है, अपना चिंतन इस दिशा में मुड़े कि आज तक हम जो गलती करते आ रहे हैं, कम से कम गुरुदेव का योग मिलने के बाद हम इस योग को सार्थक करके यहां से जाएं, तब तो हम कहने के अधिकारी हैं कि गुरुदेव हमारे लिए आए थे, वे हमारे लिए आए थे और हमारा भाव का भ्रमण नहीं मिटा तो फिर काय के लिए आए थे गुरुदेव, गुरुदेव भव का भ्रमण मिटाने का उपदेश देने के लिए आए थे ना, और हमने भव का भ्रमण नहीं मिटाया तो फिर हम ये कहने के अधिकारी हैं कि गुरुदेव हमारे लिए आए थे। जिनको भव का भ्रमण मिट गया या भव भ्रमण के मिटने के संस्कार भी अपने हृदय में दृढ़ हो गए तो अपन कह सकते हैं गुरुदेव हमारे लिए आए थे। हम भव बढ़ाने के काम करें और गुरुदेव हमारे लिए आए थे, तो मन हमारे भव बढ़ाने के लिए आए थे क्या, नक्की तो करो जरा। ज्ञानी धर्मात्मा का कितनी करुणा बरसती है, आज अपने एक ज्ञानी ने अपने को कितना परिचय करा दिया, कितने ज्ञानियों से परिचय करा दिया, कितने ज्ञानियों का मार्ग अपने सामने रख दिया। काम तो अपने को करना है, दूसरा कोई नहीं करेगा। चर्चा में अभी सुन भी रहे थे, कल भी सुना था, आज भी सुना है, काम अपने को ही करना है, दूसरा कोई करा नहीं देगा, है ना। ये बात है बहुत बढ़िया। देखो क्या आया यहां पे, कि देह नो स्वभाव जीव पद्मा जनाय छे, एवो जो अनादि, एवो जो अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ऐसा जो अनादि का जड़ और चैतन्य के एक रूप का अज्ञान भाव, एक रूप का मिथ्यात्व भाव, जड़ और चैतन्य को एक मानना कि यह अनादि का मिथ्यात्व भाव है, ये ऐसा मिथ्यात्व भाव अनादि काल से चल रहा है, भले ही वो एक एक समय करके है लेकिन चल अनादि काल से रहा है। छड़ाला के हिसाब से मोह महामद पियो अनादि भूल आपको भ्रमतवादी। सकल गए गया की स्तुति में भी अपन बोलते हैं, मैं भ्रम्यो अपन को विसरी आप अपनाए विधि फल पुण्य पाप, ये सब बोलते हैं अपने आप को भूल करके। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि एवो जो अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी नो ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाय छे। ज्ञानी के वचन के द्वारा ये अनादि काल का एकत्व का अभिप्राय का मिथ्यात्व भाव दूर हो जाता है। ज्ञानी का वचन तो वास्तव में पात्र हो उसके लिए तो ज्ञानी का वचन रामबाण है। खुद की पात्रता चाहिए तो रामबाण है ज्ञानी का वचन, है ना। अपन अपने सामने अपन लोगों ने देखे हुए या अपन लोगों ने मैंने अभी लंबा काल नहीं हुआ सुने हुए प्रसंग, गुरुदेव श्री के संपर्क में 15 वर्ष की उम्र में बहन श्री आई थी, पहली बार गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना था, ठीक है। उस समय गुरुदेव को समय सार मिल गया था तो दृष्टि का क्रांतिकारी परिवर्तन तो हो ही चुका कि मूल मार्ग क्या है, ठीक है। और उस समय गुरुदेव श्री के प्रवचन में सम्यक दर्शन के ऊपर बहुत जोर आता था, बहुत जोर आता था। और किसी ने कहा कि ये महाराज आए हैं ना कि इनके प्रवचन कोई अलौकिक होते हैं, ये सम्यक दर्शन के ऊपर बहुत जोर देते हैं। तो एक कौतूहल भी था, पहली बार प्रवचन सुनकर के नक्की कर लिया था बहनश्री ने। क्या नक्की कर लिया था? इस भाव में सम्यक तो लेना ही है, नक्की किया अपन लोगों ने, पहले प्रवचन में नक्की कर लिया। और नक्की ही नहीं किया तद अनुरूप उनके पुरुषार्थ की दिशा भी चालू हो गई और अति अल्प काल में 19-19.5 वर्ष की उम्र में भवांतकारी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। एक वचन ज्ञानी का, एक वचन से सम्यक्त्व। सोगानी जी साहब का उदाहरण सबके सामने प्रसिद्ध है, ठेठ मारवाड़ी बनिया गुजराती, और वो भी गुरुदेव की, उस समय तो काठियावाड़ी भाषा चलती थी, 46 के बात है ना, ये काठियावाड़ी भाषा चलती थी, लेकिन अंदर की तड़प शांति है तो मुझे वो मिलना चाहिए। ज्यादा नहीं सुना, राग और आत्मा भिन्न है। एक वचन से जिन्होंने गुरुदेव की वाणी को सार्थक कर दिया, गुरुदेव की वाणी का फल ला करके दिखा दिया कि गुरुदेव की वचन के एक घंटे के प्रवचन की बात तो छोड़ो, उनके एक सेंटेंस में कितनी ताकत है निमित्तता की, कि किसी के भव अंत का निमित्त ही नहीं हो सकती बल्कि यह भी हो सकती है कि अपने गुरु को यह कहने पर मजबूर कर दे कि आप जब हम मोक्ष जाएंगे, मैंने हम तीर्थंकर होंगे और मुनि दीक्षा अंगीकार करेंगे, उस समय सोगानी को हमारा नमस्कार पहुंचेगा। है कोई गुरु ऐसा, कोई मिलेगा तुमको गुरु हमको जो अपने शिष्य के प्रति भी ऐसा अवभाव व्यक्त कर सकने की जिनमें दृढ़ दम हो, जिनमें ऐसे गुरु मिलेंगे? और एक वचन से काम कर लिया, बोलो तो। ये यहां पे लिखा ना उन्होंने, क्या लिखा कि ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाए छे। अनादिकाल का एकत्व, ए अनादिकाल का एकत्व बुद्धि, अनादिकाल की एकत्व बुद्धि कहते ज्ञानी के वचन से दूर हो जाती। ज्ञानी के वचन से का मतलब क्या कि ज्ञानी ने बोला और हमने सुना और सुन करके उस रूप परिणमन किया। ज्ञानी ने बोला अपनी आत्मा को देखो, जड़ से वेद ज्ञान करो, वैसा ज्ञानी ने कहा तदनुरूप हम प्रवर्तन करें, ज्ञानी के मार्ग का अनुसरण करें। अनुसरण करें नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बोला राग और ज्ञान भिन्न है तो रात भर बैठ करके राग और ज्ञान की भिन्नता का घोलन किया। घोलन किया तो जैसा गुरुदेव ने राग और भिन्नता को बोला था, गुरुदेव तो राग से भिन्न परिणमते हुए ज्ञान रूप परिणमते हुए राग से भिन्न की बात करते थे, और सोगानी जी ने राग से भिन्न परिणमता हुआ ज्ञान का दर्शन किया। बहन श्री ने ऐसे दर्शन किए आत्मा के, सम्यक लेना है तो लेना है, दृढ़ता चाहिए, प्रबल पुरुषार्थ उसके लिए हो, कुछ नहीं दुनिया की परवाह फिर, है ना। ऐसे बातें हैं भाई, समझना बात को जरा। इसको देखो क्या कहते हैं, भासे जड़ चेतनो प्रगट स्वभाव भिन्न, मन द्रव्य निजे निजे रूपे स्थिति थाए छे। क्या मतलब कि जब इस प्रकार जड़ और चैतन्य का प्रकट स्वभाव भिन्न भिन्न भाषित होता है, कब कि ज्ञानी के वचन के द्वारा, जब एकत्व का मिथ्यात्व भाव रूप मोह दूर हो जाता है, तभी क्या होता है कि जड़ और चैतन्य का प्रकट स्वभाव भिन्न भिन्न भाषित होता है। क्या मतलब कि बने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे, मतलब क्या कि अभी तक हम एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिलावट करके मानते थे। अभी क्या हुआ, पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा दोनों का प्रत्यक्ष भेद ज्ञान हो जाता है। ये ज्ञानी के वचन का कमाल है। अपनी योग्यता पुरुषार्थ की हो तो ज्ञानी का वचन ऐसा प्रबल निमित्त हमारे सामने हो सकता है, होता है, कईयों को हुआ है, और जिन जिन को हुआ है उन सबको हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना धर्मात्मा ज्ञानी की देशना सुने किसी को भी सम्यक्त की उपलब्धि हो, ऐसा आज तक कोई उदाहरण नहीं बना। ये बात अलग है, इस भव में सुनी हो, पूर्व भव में सुनी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनी हो केवल, तो उसका विचार आकर के उसका परिणाम जीवन में आता है फिर, है ना। तो ये यहां पर जो बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी बात कही यहां पे, ये आया ना, एवो जो अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव, ज्ञानी ना वचन बड़े दूर थई जाय छे, भासे जड़ चेतनेनो प्रगट स्वभाव भिन्न है, भिन्न है तभी तो भाषित होता है। फिर क्या हुआ, बने द्रव्य निज निज रूपे स्थित थाय छे, दोनों द्रव्य निज रूप में स्थित होता है, मतलब क्या कि वे तो अपने अपने रूप में स्थित हैं, लेकिन तेरी बुद्धि में भी वे दोनों अपने अपने रूप में स्थित हैं, ये बात आ जाती है, तो हमारी बुद्धि में दोनों द्रव्यों की भिन्नता स्थापित हो जाती है, एक द्रव्य का अंश दूसरे द्रव्य में हम नहीं मिलाते, और अपने अखंड शुद्ध त्रिकाली ध्रुव परमात्मा के लक्ष्य से मिथ्यात्व जड़ चेतन की मिथ्यात्व भाव का अभाव करके हम अपना हित कर सकते। ये इस पूरे के पूरे दोहे का फलितार्थ है। इसके बाद के दोहों पर भी अपन आगे और चर्चा करेंगे।
सहजानंदेशु स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंद।